श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12वां अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक क्रमांक 30। सई श्लोके विख्यातः परीक्षेदिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टमनुध्यायं परीक्षेत नरेश्विह। अनुवाद। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिसे इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उसका यानी भगवान का चिंतन करता रहेगा। तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा, महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में अमिट हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से निकलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं यह वह व्यक्ति तो नहीं जिसे उसने सर्वप्रथम गर्भ में देखा था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर कोई आकर्षक नहीं हो सकता। अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो लें, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण का एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन देवताओं की पूजा किया करता था और निकट के राधा गोविंद मंदिर के अनुष्ठानों का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेलने के दवों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुसार इन उत्सवों को देखा करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वे खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गईं। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह उनकी कृपा के बाद वह उनकी कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो गई। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन से प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा मनुष्य अवसर को खो सकता है जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। हरे कृष्ण। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने एक जगह पर एक बड़ा अनोखा दृश्य देखा कि एक 90 या 95 साल का बूढ़ा एक नारियल का पेड़ डाल रहा है। तो महाराज उसे देखकर हंसने लगे और उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उसे कहा कि बाबा, साधारणतः बूढ़ों को बाबा कहते हैं, बाबा ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है नारियल का पेड़ उगने में कई साल लग जाते हैं और उसके बाद फल देने में तो कई और साल लग जाएंगे। अब तुम डाल रहे हो, तुम इसके फल को कभी चख नहीं पाओगे, क्या मूर्खता कर रहे हो? तो वृद्ध व्यक्ति उस राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मेरे दादाजी भी ऐसे ही सोचते तो आज मुझे ये नारियल नहीं मिलता। कहने लगे कि मेरे दादाजी ने ये सारे नारियल के वृक्ष जो देख रहे हो उन्होंने उसको डाला था, मेरे पिताजी ने उसको बड़ा किया, फल का आस्वादन किया, उन्होंने कुछ पेड़ डाले, उसका मैं आस्वादन किया और अब मैं ये नारियल के पेड़ डाल रहा हूं जो मेरे बच्चे और मेरे पोते इसका लाभ लेंगे। राजा सुनकर इतना आनंदित हुआ, तुरंत उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और उस बूढ़े को दे दिया। वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, देखो नारियल के पेड़ डालने के बाद पहला फसल जो है नारियल के फल का वो कई सालों के बाद मिलता है, पर ये इतना सौभाग्यशाली है मेरा नारियल का पेड़ कि डालते ही देखो पहला फसल दे दिया 100 स्वर्ण मुद्राओं का। तो राजा इस उत्तर से और इस दृष्टिकोण से इतना प्रभावित हुआ कि तुरंत उसने और 200 स्वर्ण मुद्राएं ली और उस बूढ़े को दे दिया कि आज तुमसे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखा। तो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, देखो कोई भी पेड़ साल में एक बार फल देता है, पर यह पेड़ अभी डाला ही नहीं, 2 बार फल दे दिया। राजा ने कहा, अभी मैं चलता हूं। कहने का मतलब है, अगर हमारे पूर्वज बेजवाबदार और अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाते तो आज जो हम नहीं होते इस तरह से। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी हमारी ये जो गुरु शिष्य परंपरा हम देख रहे हैं, इन्होंने भी अपने पूर्वजों से जो अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया, पूर्वजों की तपस्या, उनका त्याग, बिना तपस्या और त्याग के सैक्रिफाइस, कोई अच्छा चीज उपजता नहीं है। ये यज्ञ की क्रिया ऐसी है, यज्ञ यानी त्याग या तपस्या। यज्ञ में स्वाहा कर देना। एक गुरु जैसा एक बीज है, आप एक कोई बीज लीजिए, जब तक बीज मिट्टी में अपने आप को नष्ट नहीं कर देता तब तक एक पेड़ नहीं उगेगा और हजार बीज नहीं आएंगे। एक बीज को अपने आप को पूर्ण रूप से मिट्टी में नष्ट कर देना है तब जाके एक पेड़ उगेगा और उसमें से हजार बीज आएंगे। इसी तरह से एक सद्गुरु अपने वाणी से, अपने उदाहरण से, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने शिक्षा से, अपने शरीर से पूर्ण रूप से अपने आप को नष्ट करके हजारों शिष्य परंपरा में स्थापित करते हैं, जो उसी ज्ञान को और विस्तृत रूप से पूरे विश्व भर में फैलाते हैं। तो ये हर एक जिम्मेदार जो नेता है, लीडर, उसका एक कर्तव्य है कि जो हमें उपलब्ध मिला है कृतज्ञता पूर्वक उसे स्वीकार करना और उस कृतज्ञता को प्रकट करने का तरीका है कि जिस तरह से किसी और ने तपस्या करके हमें ये ज्ञान दिया है, हमें ये मूल्य दिए हैं हृदय में, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाया है, उसको उसी तपस्या और उसी परित्याग के जो परंपरा है उसके द्वारा दूसरों को देना। जिस हद तक ये परंपरा चलती रहेगी तब तक इस संसार में देयर विल बी सैनिटी, लोग सीधे साधे रहेंगे, मतलब ठीक दिमाग वाले रहेंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे, बेजवाबदार हो जाएंगे, संसार जो है नारकीय बन जाएगी। तो यहां हम देखते हैं महाराज युधिष्ठिर एक जिम्मेदार राजा होने के कारण, सम्राट होने के कारण उनकी एक ही चिंता थी कि मैंने अपने पूरे ताकत के साथ भगवान के जो नियम है उसको, राजा प्रत्यक्ष देवता, राजा जो है नरदेव, भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के नियम को स्थापित करने में मदद करता है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? भगवान ने कहा परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। राजा का भी वही कर्तव्य है, ब्राह्मणों और साधुओं की संरक्षण। जैसे महाराज दशरथ के पास जब विश्वामित्र आए और कहे मारीच और सुबाहु बहुत तकलीफ दे रहे हैं, आप आओ और संभालो। तुरंत महाराज दशरथ तैयार हो गए। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो यज्ञ संपन्न हो रहा है पूरे संसार के भलाई के लिए, ये ऐसे महान संत महात्मा जो कर रहे हैं, इसका अच्छी तरह से संरक्षण होना चाहिए। इनको सारी सब प्रकार के रिसोर्स क्या बोलते हैं, मदद सहायता मिलनी चाहिए और कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो राजाओं का कर्तव्य था। तो महाराज युधिष्ठिर ने परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और कोई भी अगर नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, राजा इतने वीर होते थे शेर जैसे, एक बार किसी जानवर के पीछे पड़ गया उसे मारकर ही वापस आएगा। इसीलिए जयपुर में जितने सारे राजा, सिंह मान सिंह, सिंह मतलब गरजना सिंह जैसे, और धर्म संस्थापनार्थाय, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से और अपने क्या बोलते हैं राज्य में देखते थे कि कहीं भी कोई ऐसे कार्य न हो जो धर्म के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश आज ऐसे राजा नहीं है, पहले ऐसे हुआ करते थे राजा, अपना जान भी देकर इस तत्वों को पालन करते थे। तो महाराज युधिष्ठिर ऐसे एक सम्राट थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो एक तो उन्होंने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जिसमें किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, सभी सुखी थे, सुख और समृद्धि सब जगह था, किसी को किसी प्रकार की जरूरतें नहीं थी, जो भी चाहिए सब तृप्त हो गया था, संतुष्ट थे सब, किसी चीज की कमी नहीं थी राजा पूरे राज्य में। पर राजा का एक ये भी कर्तव्य है कि जाने से पहले एक ऐसा जिम्मेदार युवराज, ऐसे राजा छोड़ जाना जो इसी चीज को बनाए रखे। और इसीलिए हमेशा राजा चिंतित रहते थे कि एक पुत्र, ऐसा पुत्र उन्हें मिले जो इस परंपरा को बनाए रखे। और जब अभिमन्यु की पत्नी का पुत्र उत्पन्न हुआ, तुरंत उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, जात कर्म संस्कार किए और संस्कार करने के बाद पहले पूछे ये कैसा बनेगा, ये कैसा होगा, ये क्या हमारे वंश का जो महिमा है उसको बनाए रखेगा कि इस वंश में एक बड़ा कलंक बनेगा। और ब्राह्मणों ने देखा महाराज परीक्षित के क्या कहते हैं उसको कुंडली, और देखकर कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपका ये जो लड़का है प्रजा के संरक्षण करने में महाराज इक्ष्वाकु सूर्य वंश के जो महान सम्राट इक्ष्वाकु हैं उन जैसे बनेगा, अपने वचन का पालन करने में प्रभु रामचंद्र जैसे होगा, दान देने में महाराज शिबी जैसा होगा, अपने परिवार का यश पूरे जगह फैलाने में महाराज दुष्यंत का लड़का भरत जैसा होगा, जिसके नाम पर आज हमारा देश जो है भारत कहलाता है, शत्रुओं के साथ धनुष विद्या में अर्जुन जैसे बनेगा, लोगों को आश्रय देने में हिमालय जैसा बनेगा ये। हिमालय क्यों? क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति अगर हिमालय में जाएगा तो उसे खाने की कमी कभी नहीं होगी, फल कंदमूल कुछ ना कुछ मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, रहने के लिए गुफा मिलेगा। कोई शहर में जाएंगे तो ये तीन चीज नहीं मिलते, पर हिमालय चले जाओ भिखारी भी जाएगा पर जाते नहीं डर के मारे। पर अगर जाओगे खाने की कमी नहीं, रहने की कोई जगह की कमी नहीं, पीने के लिए बिस्लेरी से भी ज्यादा शुद्ध पानी मिलेगा फ्री में। इतना ही नहीं, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हिमालय में जाकर आश्रय लेता है उसको भी आश्रय मिलता है और प्रगति करने का सारा सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहां। और सहनशीलता में साक्षात पृथ्वी जैसा होगा। किस प्रकार के अलग अलग अत्याचार चलते हैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को भी बड़े बड़े माइंस लगाकर बॉम्ब्स विस्फोट करके कितना सारा तकलीफ देते हैं, पर फिर भी माता पृथ्वी जो है सबका संरक्षण करती है, सहन करती है। शत्रुओं को दमन करने में ये शेर जैसा होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति को घर के बाहर शेर होना चाहिए, घर के अंदर थोड़ा मेंढी जैसा होना चाहिए। मेंढी क्या होता है? लैम। घर के अंदर शेर, बाहर मेंढी नहीं, राजा। और शेर का खासियत है एक बार वो किसी के पीछे पड़ गया तो मार के ही वापस आता है, वो तब तक वापस नहीं आएगा। उदारता में ये बालक रंतिदेव, महाराज रंतिदेव जैसा बनेगा और शुद्ध भक्तों में साक्षात प्रहलाद जैसे बनेगा। जब महाराज युधिष्ठिर ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि अब मेरा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो है वो यशस्वी हो गया, मैंने उस जिम्मेदारी को कर दिया कि एक ऐसा वंशज हमारे वंश में आ गया है जो इस वंश की जो परंपरा है, महान शुद्ध भक्त जैसे महान सम्राटों का जो परंपरा है इसको चालू रखेगा। तो ये जवाबदारी है। कोई भी जो नेतृत्व करने का एक पद उपाधि स्वीकार करता है, लीडर, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर की भी इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो, विष्णु का ही एक अंश, जो मेरी हृदय की इच्छा है कि पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध वैदिक संस्कृति फैले। ये अगर मैं कर दूं, मैं जो नहीं कर पाया, मैं बहुत कुछ जितना हो क्या किया हूं, पर ये इसको बनाए रखे तो मेरा जीवन सफल। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले पे, उस बालक के गले पे जगन्नाथ जी का हार पड़ा, भगवती देवी उनकी पत्नी ने आके बताया, भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि मेरी एक जो प्रार्थना थी, मेरी एक जो बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बड़ा सरदर्द था मेरे सर पे, बड़ा बोझा था कि ये क्या होगा मेरे बाद, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अच्छी तरह से चलेगा। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है। शास्त्र में कहा गया है गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात् न पतिम न सास्यात् नमोचयेतत् समुपेत मृत्युम्। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? कोई भी पदवी स्वीकार करता है, कौन कौन सी पदवी? गुरु, गुरु यानी शिष्यों की जवाबदारी, उनके ऊपर जो निर्भर है, शिष्यों की जवाबदारी। गुरुर न सस्यात्, एक गुरु गुरु बनने योग्य नहीं है। स्वजनों, एक रिश्तेदार रिश्तेदार बनने योग्य नहीं है। एक पिता पिता बनने योग्य नहीं है। एक माता माता बनने योग्य नहीं है, एक पति पति बनने योग्य नहीं है, एक देवता देव बनने योग्य नहीं है, जब तक वो अपने ऊपर जो निर्भर हैं उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकालने का एक सुविधा न प्रदान करें, ज्ञान के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा। क्योंकि सचमुच में कृष्ण ही गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सचमुच में कृष्ण ही सब कोई है, सब कुछ है हमारे। कृष्ण की कृपा के बिना एक पिता अपने बच्चे को बचा नहीं सकता, कृष्ण की कृपा के बिना एक माता अपने बच्चे को बचा नहीं सकती। तो सचमुच में हम अपने जब गुरु, माता, पिता, पति, जो भी पदवी या एक एक उपाधि स्वीकार करते हैं, तो हमें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक राजा का कर्तव्य है, भगवान जो चाहते हैं वो नियम को पालन करना, वो नियम का पालन करवाना दूसरों से और देखना, ये राजा का कर्तव्य है। इस तरह से माता पिता का भी यही कर्तव्य है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है। कभी कभी हम समझते हैं कि अगर हमने एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को डाल दिया, अभी वो अंग्रेजी बोलता है, अभी वो अच्छा स्कूल पास कर लिया, उसे एक डिग्री मिल गई, उसका मैंने शादी करा दिया अच्छी लड़की या लड़के से, एक फ्लैट दिला दिया, दो बेडरूम वाला अटैच बाथरूम, हो गया मेरा जिम्मेदारी। पर सचमुच में क्या ये बड़ी जिम्मेदारी है? ये तो पशु पक्षी भी करते, वो भी अपने बच्चे को घोंसला बना के देते हैं, बड़े होने तक हमसे अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, जब तक वो उड़ के अपना पैर पे नहीं खड़े हो जाए तब तक वो जवाबदारी देखते हैं। उनमें और हमें क्या अंतर है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको ये ज्ञान देना जिससे फिर से इस भौतिक संसार में जन्म न ले, यानी शुद्ध भक्ति देना, और उसे देने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो वो करने के लिए तैयार होना, नहीं तो पिता ही बनना नहीं, माता ही नहीं बनना। सचमुच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम जानते ही जिम्मेदारी क्या है तो शायद ये कोई जिम्मेदारी पदवी लेते ही नहीं। इसे संस्कार कहते हैं। एक सुसंस्कृत समाज का यह लक्षण है, हर एक व्यक्ति जवाबदार लेता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह, एक तात्पर्य में, कि एक सुसंस्कृत समाज का लक्षण है कि पांच लोगों का संरक्षण होना चाहिए। ये पांच लोगों का संरक्षण समाज में हो रहा है तो यह समाज जो है ये सुसंस्कृत समाज है, सिविलाइज्ड सोसाइटी। किनकी संरक्षण होनी चाहिए? वृद्धों का संरक्षण होना चाहिए, स्त्रियों का संरक्षण होना चाहिए, गाय की संरक्षण होनी चाहिए, ब्राह्मणों का संरक्षण होना चाहिए और बच्चों का संरक्षण होना चाहिए। इनका शोषण नहीं होना चाहिए। क्यों वृद्ध का संरक्षण होना चाहिए? वृद्धों का संरक्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि वृद्ध जो है उन्होंने पूरा जीवन अपना जिम्मेदारी निभाया है, अब उनका समय आया है शरीर छोड़ने का, अब उन्हें अगले जन्म की तैयारी करने के लिए सारी सुविधा देनी चाहिए और कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए। एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना के देना चाहिए ताकि वो निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करे, ज्यादा भगवान में मन लगाए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी कर दिया है। अभी अंतिम दिन तक क्यों चिंता की, उसका क्या पोता क्या, उसका होगा कि नहीं, खाएगा कि नहीं। उनके जीवन को तैयारी करना, क्योंकि उन्होंने इतना जीवन में त्याग दिया है, अब उनकी उनका संरक्षण करना समाज का कर्तव्य है। स्त्रियों की क्यों? स्त्रियों की पवित्रता जिस हद तक समाज में बनी रहेगी, तब तक जो संतान होंगे वो शुद्ध होंगे, नालायक नहीं होंगे, और क्या बोलते हैं, वर्ण संकर नहीं होंगे। इसीलिए अर्जुन को भी चिंता थी कि अगर सब मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां सब, उनका शोषण हो सकता है। तो स्त्रियों का संरक्षण, जितना वो संरक्षित रहेंगे समाज में स्त्रियां, उस हद तक जो आने वाले संतान होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे। गोरक्षा, क्यों गोरक्षा? क्योंकि गाय एक ऐसा दूध देती है जो एक ऐसा दिव्य खाद्य है जिसके स्वीकार करने से हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे पेशी आते हैं जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाते हैं। ब्राह्मणों का संरक्षण क्यों? शिवाजी महाराज के वो ये है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। क्यों ब्राह्मणों का संरक्षण? क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं असली में ब्राह्मण, सिर्फ नाम के ब्राह्मण नहीं, असली ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो समाज के मस्तिष्क का काम करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है बतलाते हैं, पठन पाठन, उनका संपूर्ण जीवन शास्त्रों का अध्ययन और दूसरों को सिखाना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, और उसके लिए पैसा नहीं, नो चार्ज, फ्री में, क्योंकि वो मुफ्त में सब देते हैं, उनका संरक्षण करना समाज का या सरकार का कर्तव्य है। और पांचवा, बच्चों का। क्यों? आज के बच्चे जो है कल के नागरिक हैं, आज के बच्चे जैसे होंगे कल के नागरिक ऐसे होंगे, और बचपन वो समय है जहां उन्हें एक पाया दिया जाता है। मनुष्य के जीवन का तीन भाग होता है, एक भाग होता है ज्ञानार्जन, पहला 25 साल, 25 से 50 साल अर्थ का अर्जन, और 50 के बाद परमार्थ का अर्जन। तो अर्थ और परमार्थ तभी कर पाएंगे जब उनका आधार बहुत ही दृढ़ होगा, और वो दृढ़ कब होगा? जब उनको आध्यात्मिक संस्कार मिलेगा। और इसीलिए एक ऐसा अनुकूल संग प्रदान करना, अनुकूल वातावरण प्रदान करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, तो भक्त समाज की तो दूर की बात, भक्त समाज का क्या कहना फिर, दूसरे समाज तो दूर की बात, भक्तों के समाज तो और भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी। तो यह संरक्षण करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबसे बड़ी चिंता भक्तों की यही है, किसी तरह से हम तो भक्ति में आ गए पर हमारे बच्चे भक्ति में आए, ये सबसे बड़ी चिंता रहती है हर एक भक्तों की, गृहस्थ भक्तों की जिनके बच्चे हैं, हर एक माता पिता की चिंता होती है। हम जिस मूल्य को प्रामुख्यता देते हैं, हम जिस विचारों को प्रामुख्यता देते हैं, मूल्यवान समझते हैं, वो ही बच्चों के हृदय में भी आना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज का समाज, आज का वातावरण इतना दूषित हो गया है, इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन, प्रलोभन, मन को इधर उधर खींच लेने वाले लाखों चीज हैं, और उसमें से बचाकर संरक्षित करके रख के उनके हृदय में एक ऐसे मूल्य को प्रदान करना बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। एक प्रवाह, नदी के प्रवाह को रोकने जैसा है उनकी वो, उनकी जो शक्ति को एक मार्ग, एक दिशा देना, इतना आसान नहीं है, एक व्यक्ति से नहीं होगा जब तक पूरे समाज का सहयोग नहीं होगा। इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक बच्चे को बड़ा करने के लिए एक पूरा गांव का सहयोग चाहिए। एक व्यक्ति से नहीं होता, एक केवल माता पिता से नहीं होगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल का कैसा आरोहण, सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, किसके घर जाएगा, पड़ोस में जाएगा, किस प्रकार का क्या हो सकता, पूरे एक गांव चाहिए। एक अच्छे बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरे गांव का सहयोग है, पूरे एक समाज का सहयोग चाहिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संस्कारात भवेत द्विज, वो केवल संस्कार से, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार ही तपसिज्जया शुद्धं पिदाने संतुष्ट्या द्रव्याणि ही आत्मा आत्मविद्या। भागवत में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है हर एक चीज को शुद्ध करने का तरीका क्या है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, पानी से धोने से बर्तन सब शुद्ध हो जाते हैं, दान देने से धन शुद्ध हो जाता है, तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, संतुष्टि से मन शुद्ध हो जाता है, और इसी तरह से जन्म शुद्ध होता है संस्कार के द्वारा। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर एक बच्चा शूद्र है। शूद्र का मतलब क्या, शूद्र का मतलब कुछ नहीं मालूम, क्या खाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कैसा बैठना है, कैसा रहना है, कुछ नहीं मालूम। छोटे छोटे बच्चों को सिखाना पड़ता है, एक ठीक बस मतलब ठीक से बैठो, ऐसा नहीं बोलना बड़ों के सामने, ए वो नहीं खाने का, नीट बस है कि नहीं, बार बार बोलना पड़ता, याद दिलाना पड़ता है उन लोगों को, नहीं मालूम क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कुछ भी बोल देते वो लोग। तो जन्म ना जाए थे संस्कारात भवेत द्विज, संस्कार के द्वारा दूसरा जन्म होता है। तो ये संस्कार देना बहुत जरूरी है और ये सबसे बड़ी तपस्या है, तपो दिव्यम पुत्र का। तो ये तपस्या करना पड़ेगा, एक अनुकूल वातावरण देना सबसे बड़ी तपस्या है। एक बार हमारे एक सन्यासी हैं राधानाथ स्वामी, वो अमेरिका में न्यू वृंदावन नाम के एक कम्युनिटी है वहां रहते थे, और कॉलेज में जाते थे और कॉलेज के बच्चों को लेक्चर देते थे, कभी कभी बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को, लेक्चरर लोगों को भी लेक्चर देते थे। तो एक बार वो एक बहुत महा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वहां गए जहां काफी बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरर्स और विद्यार्थी भी थे। तो महाराज जी गए और साथ में एक 7 साल के बच्चे को ले गए, जो उस समाज के गुरुकुल में एक छोटा बच्चा था। तो महाराज जी गए, कीर्तन किया, और ये बच्चा, वो करताल बजा रहे थे महाराज जी, और ये छोटा बच्चा जो था मृदंग बजा रहा था बहुत अच्छी तरह से, एकदम बहुत मतलब दक्षता से मृदंग बजा रहा था, और कितना फर्स्ट क्लास कीर्तन कर रहा था बड़े प्रेम से। उसके बाद 1 घंटे का प्रवचन दिया महाराज ने, सब विद्यार्थी चले गए, केवल एक वृद्ध प्रोफेसर बैठे थे उधर। तो महाराज जी ने उनको जाके पूछा कि आपको लेक्चर कैसे लगा। बोले लेक्चर तो मैंने बहुत ऐसे सुना है, अच्छा अच्छा लगा, आपने अच्छा बोला, पर मैंने बहुत लेक्चर सुना है, मैं लेक्चर से प्रभावित नहीं हुआ, मैं प्रभावित हुआ ये देखकर कि आपने जो अपने साथ जो बच्चे को लाया था, 7 साल के छोटा बच्चा, ये बच्चा बड़े प्रेम से आनंद से आपका जो मूल्य है उसको ग्रहण कर रहा है। आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, बट बड़े प्रेम से आपका जो सिद्धांत है उसको बड़े प्रेम से और आनंद के साथ उसे स्वीकार कर रहा है। मैं समझता हूं ये एक संस्था का सबसे बड़ा यश है कि अगला जो हमारी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारधाराओं को, हमारे मूल्यों को किस प्रकार आनंद के साथ स्वीकार करेगी, प्रेम के साथ, खेलते खेलते। अगर किसी को जबरदस्ती करके बैठाना पड़े, अगर किसी को डंडा दिखाकर कराना पड़े तो ये यशस्वी नहीं है। हमने कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या और त्याग जरूरी है, पूरे समाज का योगदान जरूरी है, सहयोग जरूरी है, एक व्यक्ति से नहीं होने वाला। जब तक पूरी समाज इसका महत्व नहीं जानेगी तब तक यशस्वी नहीं होंगे हम लोग। हम बड़े स्वार्थी बन जाएंगे, हम तो भक्ति कर लिए, अगली पीढ़ी जाने दो, मेरे हम लोगों को क्या है, मतलब हमने घर साफ किया और सारा कचरा लेकर पड़ोसी के कंपाउंड में डाल दिया, हमारा हो गया ना बस, अब दूसरी पीढ़ी तो उनको सोचने दो। आज दुर्भाग्यवश यह स्थिति है। तो अगर हम इसमें एक प्रोएक्टिवली, मतलब पहले से ही सोच समझ के, ऐसा नहीं कि सब बड़े होने के बाद अरे पहले से किया होता तो कितना अच्छा होता, काश, उसके बदले अभी से अगर सतर्क होकर, अभी से चौकन्ने होकर, अभी से थोड़ा बहुत तपस्या और त्याग करके अगर एक ऐसा अनुकूल संग, एक ऐसा अनुकूल वातावरण, एक ऐसा अनुकूल सुविधा बनाएंगे जिसके द्वारा हर एक बच्चे खेलते खेलते आनंद और प्रेम के साथ, ये जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, ये जो हमारे विचारधाराएं हैं, सिद्धांत है, शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, उसको अगर प्रेम से स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हम अपने पूर्वजों, परंपरा के सामने खड़े हो सकते हैं और वो मुस्कुरा कर कहेंगे धन्यवाद। नहीं तो हम उनके सामने खड़े होने के योग्य नहीं होंगे, थोड़ा सर झुका के खड़ा होना पड़ेगा, स्वामी जी आपने तो हमें दे दिया, हमने ले लिया, पर क्या करें, ये नालायक निकले, कहीं हमने चूक की है, तो ये अगर नहीं होने देना है, अभी से सतर्क होकर हमें वो कदम लेना है। हमारे परंपरा में एक आचार्य है मुकुंद सरकार, उनके पुत्र थे रघुनंदन। मुकुंद सरकार एक बार बाहर गांव गए, उनके पास एक छोटी सी विग्रह थी, उन्होंने दिया और रघुनंदन उनके पुत्र को कहा, 5 साल के पुत्र को, बेटा भोग लगा देना, मैं जा रहा हूं बाहर। उसे कभी नहीं लगा, कभी नहीं मालूम, वो जाके खड़ा हो गया और बोला भगवान खाओ। तो भगवान खड़े हुए, खाओ, अरे पिताजी नहीं आए, बाहर गए, आप खाओ, मेरे मैं क्या करूं, मैं लाया हूं आज, खाओ। और जब नहीं खाए भगवान तो रोने लगा, बैठ गया, बोला मैं क्यों, मैं आया हूं इसीलिए नहीं खा रहे हो। इतने प्रेम से उसने चढ़ाया कि भगवान बैठ गए आल्टर पे और बोले क्या है, क्या लाया, ठीक है, सब खा लिया, बोले खुश, हाँ। चला गया, मां ने बोला बेटा प्रसाद किधर है, महाप्रसाद, बोले महाप्रसाद हो गया, भगवान ने खा लिया, क्या कुछ नहीं बोली। पिताजी आने के बाद, पति आने के बाद कहने लगे, देखो जी बच्चा कहता है कि भगवान खा लिए, खाली प्लेट लाया, आज तक तो आपने खाली प्लेट नहीं लाया। पिताजी ने कहा सचमुच में, पिताजी को विश्वास था कि ये काफी बड़ा अच्छा मतलब भक्त है। तो उन्होंने बेटे को बुलाया, बेटा ये ले लड्डू ले, और एक चढ़ा और पर्दे के पीछे छिप के देख रहे थे। फिर से गया रघुनंदन, भगवान को भोग लगा, बोला भगवान खाओ। भगवान ने बोला अभी अभी खाया हूं, फिर से क्यों खिला रहा है? बोले नहीं 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 पिताजी ने दिया, अभी खाओ। बोले नहीं पेट भर गया। बोले कुछ थोड़ा तो खाओ। बोले ठीक है। आधा लिए, आधा लेते ही आवाज आया, कोई पर्दे के नीचे से नीचे गिर गया, पिताजी बेहोश हो गए। ये सत्य कथा है। आज भी उस मंदिर में बंगाल में आधा लड्डू बांटा जाता है सबको, उस घटना के स्मारक में। तो ये संसार, ये संस्कार, अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं बाप शेर तो बेटा सवा शेर। हमारे बंबई में हुई एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। एक लड़का 8 साल का, पिताजी ने उनको, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरे पिता ने मुझे एक छोटा सा विग्रह ला के दिया और मैं उसकी सेवा कर रहा था, और बीच में कॉलेज में गया तो सब भूल गया, सब ठप हो गया मेरा अभ्यास, पर जब मैं गुरु से मिला भक्ति सिद्धांत से, फिर से पुनर्जागृत हो गया। तो इस तरह से इनके पिताजी, इस लड़के के पिताजी 8 साल की उम्र में उसको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के छोटे विग्रह ला के दिए और वो पूजा करता था। फिर बोला मैं आपके ऑल्टर में प्रभुपाद है, मेरे ऑल्टर में भी प्रभुपाद चाहिए। तो उन्होंने मिट्टी का एक प्रभुपाद आते हैं, प्रभुपाद की मूर्ति आती है, प्रभुपाद की मूर्ति भी ला के दिया। अभी बोला मेरे को चामर चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए, जो जो आप करते हो मेरे को भी चाहिए, सब ला के दिया छोटे छोटे वाला। एक दिन पिताजी बाहर गए हुए थे, मां वहां थी, उनको कुछ आवाज आया, तू जाके देखी क्या हो रहा है। बच्चा जो है बाथरूम के पास खड़े होकर अपने आप को थप्पड़ मार रहा है जोर जोर से। तो मां ने कहा बेटा क्या हो गया, क्यों अपने आप को थप्पड़ मार रहा है ऐसे? बोले मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हो गया बेटा? बोले मैं चामर डोला रहा था, प्रभुपाद जी के सर पे चामर लग गया, वो प्रभुपाद की मूर्ति नीचे गिर गई और सर शरीर से अलग हो गया, इसलिए रो रहा है वो, लगातार रो रहा है और अपने आप को थप्पड़ मारा, पूरा गाल लाल हो गया। तो मां ने बोला बेटा नहीं नहीं चिंता मत करो, और एक प्रभुपाद जी ले आएंगे, चिंता मत करो, अभी फेविकॉल लगा के रख देंगे, चलेगा। तो चिपका के रख दिया। पिताजी को बताया मां ने कि ऐसा ऐसा हो गया, तो पिताजी बोले कोई चिंता मत करो, अभी पीतल का प्रभुपाद ले आएंगे। तो उन्होंने अगले दिन, अगले हफ्ते जब मंदिर में आए तो पीतल का एक प्रभुपाद जी का मूर्ति ले आया, और घर जाने के बाद पीतल की मूर्ति को रखा दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से उस मिट्टी की मूर्ति को लिया और बोला अभी हम लोग इसको समुद्र में अर्पण कर देंगे। तुरंत उस बच्चे ने पिताजी को कहा पापा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इधर आओ। बोले मिट्टी के इस प्रभुपाद जी को यहां रखो, पीतल के प्रभुपाद को बगल में रखो और प्रभुपाद से प्रार्थना करो, मिट्टी के प्रभुपाद से प्रार्थना करो कि प्रभुपाद आप इस मूर्ति से अब इस मूर्ति में आइए, ऐसा उनको बुलाओ, बुलाने के बाद इस मूर्ति को बाद में समुद्र में डालना। जो अर्च विग्रह की जो संहिता में शास्त्रों में बताया गया वो विधि बच्चे ने बता दिया। बाप आके मंदिर में कह रहे थे कि कौन बाप है कौन बेटा मैं नहीं समझ रहा हूं, ये मेरा बेटा है या ये मेरा बाप है। संस्कार देने से, भक्तिमय सेवा करने से जड़ वस्तु में भी जीवन देखने की जो कला है ये आध्यात्मिक तरीका है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? निर्जीव वस्तु में भी भगवान है, इसीलिए उनको सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। पर भौतिक दृष्टिकोण क्या है? जीवित व्यक्ति के साथ भी हमारा निर्जीव मशीन जैसा व्यवहार हो गया है, विरोधास्पद है। आध्यात्म और भौतिक जीवन में जमीन आसमान का अंदर 180 डिग्री का। जो भौतिक संस्कार, मतलब भौतिक संस्कार नाम का कोई चीज है ही नहीं, भौतिक जीवन में जिया है, वो मनुष्य को भी एक मशीन जैसा व्यवहार करता है, शोषण करता है उसका। पर जब आध्यात्मिक चेतना आती है तो मनुष्य तो दूर की बात, मनुष्य में आत्मा और परमात्मा को देखना तो दूर की बात, एक छोटे से निर्जीव चीजों को भी सर पे लगाकर, अगर पैर लगा तो सर पे लगाकर रखते हैं, नहीं नहीं पैर नहीं लगना चाहिए, एक पुस्तक को भी पैर, हाथ पैर लगा तो सर पे लगाकर हम लोग रखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वो भी भगवान का एक शक्ति है, और भगवान की शक्ति होने के कारण हर एक चीज का एक सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं संस्कार। और ये संस्कार कहां से आया, किसने सिखाया उसको, किसने बताया सिद्धांत? नहीं, सिर्फ भक्तिमय सेवा करने से अपने आप ये सब ज्ञान आ गया। सच्चित आनंद, चित यानी ज्ञान है, सिर्फ एक अनुकूल वातावरण बनाएंगे तो खिल जाएगा। और ये अनुकूल वातावरण, अनुकूल संग और अनुकूल सुविधाएं देना हम सबका कर्तव्य है, नहीं तो हम जिम्मेदार बन जाएंगे, हम प्रभुपाद जी के सामने, अपने गुरु के सामने, परंपरा के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हिंदी में कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत, पूत यानी पुत्र, बेटा, पूत सपूत, अगर अच्छा बेटा हो तो आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है, वो आपको समय मदद करेगा पूरा। और पूत कपूत, अगर एक नंबर का दुर्योधन निकला हो तो न केवल वो रोएगा, दुनिया को रुलाएगा, बाप को भी रुलाएगा, जिंदगी भर जो कुछ आपने बनाया है आपके सामने वो उड़ा देगा वो, और आप रोते रह जाओ। तो धन संचय करके कोई फायदा नहीं, अच्छा पुत्र है तो धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा आपका देखभाल करेगा। और एक नंबर का नालायक निकला तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या, सच्चा धन का संचय मतलब अपना सारा धन अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने में लगाओ, यही सबसे बड़ा धन है। हमारा उदाहरण बहुत जरूरी है, न केवल प्रशिक्षण, उदाहरण, हमारा खुद का उदाहरण। मैं जब छोटा था तो मेरी मां एक कहानी बोला करती थी कि एक आदमी था, तो उसने देखा कि उसके पिताजी, उनका प्रथा, उनका परंपरागत, एक चांदी के थाली में खाना खाते। तो बोला, है चांदी का थाली क्यों देना है पिताजी को, उसको हटा दिया उसने, रख दिया कहीं और पत्तल में खिलाने लगा, पत्तल में खाते थे पिताजी पत्रावली। और उसके बाद बेटे को बोलता था, बेटा, छोटा बेटा था, बेटा उठा के फेंक दे। तो एक दिन कई साल के बाद घर के पिछवाड़े में जाके देखा कि ये बेटा उस पत्तल को धो धो के अच्छे तरह से इकट्ठा करके रख रहा है। तो पिताजी ने बोला, बेटा ये जूठे पत्ते को क्यों रख रहा है? बोले, पिताजी आप जब बुड्ढे होंगे ना तो इसको खिलाने के लिए मदद होगा। उस दिन पिता ने कसम खा ली, बोले पीतल की थाली जल्दी लाओ, क्या बोलते हैं वो, चांदी की थाली जल्दी लाओ, पिताजी प्रेम से खाइए। कहने का मतलब ये है, हमारा व्यवहार, हमारा उदाहरण जो है, निश्चित रूप से दूसरों को, हमारे बोलना नहीं, हमारा प्रशिक्षण नहीं, बड़े बड़े लेक्चर नहीं, हमारे उदाहरण और हमारी तपस्या और त्याग जो है, ये अपने आप बहुत सारे चीज अपने बच्चों को सिखा देगी। अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बच्चों का सुंदर कार्यक्रम है। ये प्रवचन आज इसके बारे में क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज बहुत आनंद हो रहा है ये आप सबको सूचना देते हुए कि आज हम एक सुंदर बिल्डिंग क्या, छोटा है पर हमारे हृदय से बहुत बड़ा है वो, एक सुंदर बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं जो केवल हमारे बच्चों के लिए, जहां हर रविवार को जब हम लोग तो आके यहां सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, पर बच्चे क्या थोड़ी बैठेंगे, सब बच्चे तो प्रहलाद महाराज जैसे नहीं है, तो इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या करेंगे बेचारे, बोलते क्या मंदिर में आते पता नहीं सब लोग उधर बैठ जाते हैं, हमको भी जबरदस्ती बैठाते, हमको कृष्ण से इसीलिए द्वेष है क्योंकि जहां भी जाते हैं हमको जबरदस्ती बैठाते उधर, खेलने को भी नहीं देते, कुछ बोलने जाओ सब चुप करा देते। मैकडोनाल्ड जैसे संस्था में भी बच्चों के लिए एक सुंदर एक व्यवहार किया, वो लोग भी बड़े होशियार एडवर्टाइजमेंट वाले, बोले तुम लोग प्रेम से खाओ तुम्हारे बच्चों का हम लोग देखभाल करेंगे, तो वो लोग भी निश्चिंत होकर आते, तो वो लोग भी समझ गए कितना क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उन लोगों से भी। तो इस तरह से हमने सोचा जब हम लोग यहां आनंद ले रहे हैं कीर्तन प्रवचन इत्यादि का, कीर्तन में नहीं केवल प्रवचन, कीर्तन में तो हमसे ज्यादा वो आनंद वो लेते, तो उसके दौरान कम से कम उनको भी कुछ प्रशिक्षण मिले। अगर ये अनुकूल वातावरण उनको अच्छा लगा तो आप नहीं भी आना चाहते हो मंदिर में तो बोलेंगे चला मंदिर चलो, क्यों, क्योंकि मेरे को उधर जाके खेलने का है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जिम्मेदारी हम यशस्वी तरीके से निभा रहे हैं। तो ये बहुत आनंद की बात है। दसवें साल के दसवें महीने का दसवें दिन याद रहेगा हमको, 10-10-10 कोई कल बता रहा था मुझे 10-10-10 आज बड़ा स्पेशल दिन। तो आज के दिन ये उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग, तो अभी सुंदर एक ड्रामा होगा, ड्रामा के बाद उन लोग हमको हमको आमंत्रित करेंगे उनके बिल्डिंग में, उनके अनुमति के द्वारा ही हम लोग अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो काफी भक्तों ने बड़े विशाल हृदय से इस सुंदर एक बिल्डिंग बनाने में मदद किया है, उसमें से एक काफी लोग हैं, उनमें से एक है श्रुति गोखले माताजी बोल के, जिन्होंने काफी मदद किया है हमें पिछले काफी समय से इस लैंड लेने में, और इस मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने काफी मदद किया था, और उनके साथ साथ शुभांगी गोपी माताजी, उन्होंने भी योगदान दिया है इस प्रैक्टिकली 60-70% का जो इस कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है उन्हीं के द्वारा मिला है, और भी जो लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और काफी लोगों ने उसकी सुंदरता करने में उसका निर्माण करने में, हमारे मिलिंद पिराले प्रभु पीछे पड़ के एक एक चीज में कैसे कैसे पैसा बचाएं, अच्छा बना के फिर कैसे बचाएं, हमारे इधाते प्रभु में भी पूरा टेंशन के बाद टेंशन, कभी ये होना वो करना, बहुत सारे बेचारे बड़े बड़े बिल्डिंग आराम से खड़ा करते हैं पर ये बिल्डिंग के पीछे बहुत सारा सरदर्द हो गया उनको, फिर भी सोच रहे ऐसा वैसा क्या करना है क्या करना है, ऐसा बदलना उसको करना है, बड़े सहनशीलता के साथ बहुत प्रेम से उन्होंने, काफी लोगों ने अपना श्रम या अपना धन या अपना बुद्धि या अपना कला, आप देखेंगे कितना सुंदर डेकोरेशन बाहर से कितना सुंदर दिख रहा है, अलग अलग तरीके से प्राणायर अर्थेर धिया वाचा इस तरह से अलग अलग तरीके से लोगों ने मदद किया है। मैं कहने का मतलब यह है जब तक ऐसा एक बड़ा सहयोग नहीं रहेगा पूरे समाज के द्वारा, कोई भी हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो सकता, यशस्वी नहीं हो सकता। तो जो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसमें भाग लिए, प्रभुपाद जी और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कोल्हापुर के द्वारा की ओर से मैं उनका हार्दिक आभार और कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं, और जितने सारे शिक्षक हैं कई सालों से, ये पीछे जगह एक छोटा सा रूम था उसमें भी हमने पुस्तक भर दिया था, उसमें भी काफी माताएं यहां लेक्चर सुनते रहते हैं पर वो लोग बेचारे उनको कुछ सिखाते रहते हैं, काफी सिखाना पड़ता है ट्रेनिंग देना पड़ता है, काफी तकलीफ उठा के इन बच्चों को नाटक सिखाना, इसके बाद ड्रामा श्लोक सिखाना इत्यादि बहुत श्रम लिया है, काफी सालों से काफी लोगों ने किया है, किसी एक का नाम लेना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, आप लोगों को भी मालूम है कितने लोगों ने मदद किया है, यहां शायद आप लोगों का भी हाथ है सबका, तो आप सबका मैं आभार प्रकट कर रहा हूं प्रभुपाद जी की ओर से, कोल्हापुर के इस्कॉन की ओर से, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मैनेजिंग कमेटी इत्यादि की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मेरा एकमात्र निवेदन यही है कि कृपया जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, माता पिता का सहयोग नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट यशस्वी नहीं होगा। यहां जो सिखाते हैं आप उसको अगर घर में फॉलोअप नहीं करोगे तो यशस्वी नहीं होगा। शिक्षक, बच्चे और माता पिता तीनों का योगदान, जैसे एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड होता है, समझते हैं आप, उसमें एक स्टैंड निकाल दिया तो नीचे गिर जाएगा। ये जो खड़ा है हमारा ये स्क्रीन, उसका देखिए तीन का स्टैंड है, उसमें से एक निकाल दो, देखो क्या होता है स्टैंड का। तीनों बहुत जरूरत है, बच्चों का, माता पिता का और शिक्षकों का। तो मेरा नम्र निवेदन है आप सब माता पिताओं से कि कृपया ये जो भी ये लोग नियम बनाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि ये चीज घर में कराइए और यहां लाइए, कृपया आप इसको सहयोग कीजिए। और जिसके अंदर भी कोई कला है, आप सबसे निवेदन है, थोड़ा तपस्या, थोड़ा त्याग करके, समय निकालकर आपको कुछ कला आता है तो इन बच्चों को सिखाइए, नहीं तो हम बड़े स्वार्थी हैं। किसी तरह से हो सके इन बच्चों को एक अच्छा अनुकूल वातावरण, अनुकूल संग और अनुकूल सुविधा देने में और अनुकूल संस्कार देने में आप लोगों का मदद चाहिए। तो ये हमारा नम्र निवेदन है। और अभी हम वहां जाएंगे और वहां एक छोटा सा कीर्तन, ड्रामा, और उसके बाद एक वेलकम डांस होगा, स्वागत का एक नृत्य होगा। और नृत्य के बाद मैं शुभांगी गोपी माताजी से निवेदन करूंगा कि इसका उद्घाटन उनके हाथों से हो, क्योंकि श्रुति गोखले माताजी होती तो उनको ही मैं कहता, वो तो दुबई में है कहीं, पर उनके प्रतिनिधि के रूप में माताजी से निवेदन करूंगा कि वो उद्घाटन करें। वहां 5 मिनट का हम कीर्तन करेंगे और वहां से फिर यहां आएंगे और यहां भगवान की आरती होगी और उसको, ये जो उद्घाटन किया हुआ जो प्रोजेक्ट है उसको हम प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पण करेंगे और फिर प्रसाद लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप अभी तक जिस तरह से मदद हुआ है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी, धन्यवाद।